परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबका इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष प्राप्त करेंगे। मैं हमारे उन नए श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाइबल से लय व्यवस्था नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययनों में हमने होम बलि और अन्न बलि को देखा, जिसमें प्रभु यीशु के समर्पण थे। आज हम लय व्यवस्था के तीसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इस अध्याय में हम आज मेल बलि के विषय में देखेंगे। कृपया आप ध्यान से इस अध्ययन को सुने और नोट बनाए ताकि यह आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। आइए हम अपने विषय में आगे बढ़ें। विषय है मेल बलि। इस चढ़ावे में विश्वासियों की संगति व मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। केवल एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह है। वही एक मार्ग है। मित्रों, केवल किसी एक चढ़ावे के द्वारा हम मसीह के व्यक्तित्व के अनेकों पहलू की महिमा के बखान को नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे उसके धरती पर जीवन लीला का वर्णन के लिए नए नियम में 4 सुसमाचार की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार उसके जीवन, आचरण तथा कार्य के लिए लय व्यवस्था में 5 भेंट बलि की आवश्यकता है। हमें ध्यान देना होगा कि मेल बलि व होम बलि में अनेकों समानताएं पाई जाती है, परंतु इसके विपरीत अनेक विषमताएं भी हैं। अतः मेल बलि भी स्वयं में एक अनोखा चढ़ावा है। सहभागिता या मेल बलि उस चढ़ावे की चर्चा नहीं है जिसे मसीह ने क्रूस पर अपने रक्त बहाकर मेल की स्थापना की, क्योंकि उसमें पाप का वर्णन है और वह विषय असुखदायक सुगंध चढ़ावों के अंतर्गत आता है। पौलुस प्रेरित पाप के संबंध से मसीह किस प्रकार हमारे लिए मेल बना इस प्रकार लिखते हैं, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसके द्वारा से हमारे साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सामने पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। कुलुसियों की पत्री 1:20-22 पद। परंतु यह मेल बलि का वर्णन नहीं है, बल्कि मेल बलि के विषय पौलुस प्रेरित बड़ी सफाई से विश्वासियों का पिता के साथ संगति पवित्र आत्मा के द्वारा वर्णन इफिसियों में निम्न प्रकार से करते हैं। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। इफिसियों की पत्री 2:13-22 पद। मित्रों, मेल बलि में जोर उस मेल पर नहीं दिया गया है जो मेल वह क्रूस पर अपने लहू के बहाने के द्वारा किया, परंतु वह मेल जो वह स्वयं बना, क्योंकि क्रूस पर उसने अपना रक्त बहाया सभी विश्वासियों के लिए साथ साथ और प्रत्येक विश्वासी के लिए परमेश्वर पिता से मिलने का एक स्थान बना। मसीह ही केवल वह व्यक्ति है जिसने उस दीवार को ढा दिया जो व्यक्तियों, परिवारों, धर्मों, जातियों और राष्ट्रों को अलग करती थी। तब वे आत्मा में परमेश्वर के साथ निवास करने वाले और उसी के द्वारा उनकी पहुंच पिता तक हुई। हम देखते हैं कि केवल विश्वासी ही मसीह की महिमा, उसकी सुंदरता और आश्चर्य कर्मों में साथ साथ भाग ले सकते हैं। उनकी पिता के साथ सहभागिता तथा आपस में संगति और मसीह की सभी चीजों में भागीदारी है। यही वह है जिसके विषय यूहन्ना प्रेरित कहते हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका स्मरण तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पहला यूहन्ना 1:3। मेल बलि हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है केवल जब हम यीशु के व्यक्तित्व के समीप खींचे जाते हैं। मित्रों, मुझे किसी भी ऐरे गैरे टॉम डेल हैरी के साथ संगति रखने को मत बोलिए। ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं किसी दूसरे से संगति नहीं रखूं। मुझे कुछ भी परवाह नहीं है कि वह कौन है। यदि वह मसीह के व्यक्तित्व के निकट मुझसे भेंट करे तो उसमें हम सब एक हो जाते हैं। उसके समक्ष सभी एक ही स्तर के बन जाते हैं। हम सभी मसीह के व्यक्तित्व का आनंद लेते हैं। आइए हम इसके रूपरेखा को देखें। सहभागिता बलि अर्थात मेल बलि मसीह हमारा मेल है, 3। आमे देखते हैं पशुओं के समूह से चढ़ावा, 1-5। ब में भेड़ों के गल्ले अर्थात झुंड से चढ़ावा, 6-11। स बकरों से चढ़ावा, 12-17। ड मेल बलि का नियम या विधान, 7:11-21। और तब हम आगे देखते हैं समूह से चढ़ावा। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 3:1 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। मित्रों, मेल बलि एक प्रकार से बहुत व्यापक और विस्तृत है। मसीह ने क्रूस पर बहाए रक्त के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर से मेल करा दिया है और पापी मनुष्य अब आ सकता है। उसके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा मेल करवाने से अब परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता संभव है। मसीह और उसके छुटकारे के कार्य द्वारा परमेश्वर पूर्णतः संतुष्ट है। तो भी मेल बलि का मूल उद्देश्य संगति है और इसी पर जोर दिया गया है। मित्रों, एक पापी के लिए सुसमाचार की अपील क्या है? वह कुछ इस प्रकार है, परमेश्वर आपसे और मुझसे पापी समझकर यूं कहते हैं, तुम डूब अर्थात खो चुके हो, मुझसे बिछुड़ गए, इसलिए तुम्हें अनंत काल के लिए मुझे अंधकार में डालना होगा। यदि ईश्वर ने ऐसा किया तो वह न्यायी और पवित्र सिद्ध होगा। स्वर्गदूत आकाश में उसके नाम का महिमा गान गाएंगे। परंतु मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर इस बात से संतुष्ट है जो मसीह ने आपके लिए किया कि अब आप परमेश्वर तक आ सकते हैं। सुसमाचार का संदेश यह है, परमेश्वर से मेल हो चुका है। प्रश्न यह है कि क्या आप मेल करना चाहते हैं? यीशु के कार्य पर परमेश्वर को संतोष है। यह एक सुसंदेश है। परमेश्वर का मुख आपकी ओर है, क्या आप उसकी ओर फिरेंगे? यीशु के कार्य के कारण वह आपको ग्रहण करेंगे। क्या आप मसीह के काम पर संतोष व्यक्त करेंगे और परमेश्वर के निकट आकर उसकी संगति पसंद करेंगे? यही मेल शांति है जिसको आप जान सकते हैं। मेल बलि व होम बलि में कई बातों में अंतर है। होम बलि में केवल नर का चढ़ावा होता है, परंतु यहाँ नर मादा दोनों ही की आज्ञा है, केवल निर्दोष होना चाहिए। बलि चढ़ाने वाला मसीह में परमेश्वर के संतोष को कभी नहीं समझ सकता। अग्नि बलि में अर्थात होम बलि में परमेश्वर जैसा मसीह को देखता वह प्रकट होता है। यहाँ मेल बलि में भेंट चढ़ाने वाला मसीह में कुछ पाता है। मादा मेल बलि चढ़ावा की इजाजत इसलिए मिली क्योंकि भेंटकर्ता मसीह के दृष्टिकोण का पूर्णतः आनंद ले सकता है। बलिकर्ता मसीह में जैसा परमेश्वर देखता है वैसा शायद कभी भी नहीं देख सकेगा। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 3:2 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लोहू को वेदी की चारों आलोंगों पर छिड़के। यहां तक तो यह होम बलि का नकल करता है। तब हम आगे 3:3-4 को पढ़ते हैं। और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। यहां से होम बलि का अंतर देखा जा सकता है। पूरा होम बलि वेदी पर रखा जाता था। मेल बलि में केवल एक भाग ही चढ़ावा है, यह भाग सुनिश्चित है, यह अंदर का चुना हुआ भाग जिसमें चर्बी भी शामिल है। प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य या कीमती चरित्र, बहुमूल्य विशेषताएं या गुण, छिपा हुआ धन, सभी का विवरण है और इसे केवल ईश्वर ही जानता है। किसी एक महान व्यक्ति जिसका लोगों में भारी आलोचना हुई है, उसका परम प्रिय मित्र ही उसके वास्तविक मूल्य को समझता है। मसीह के संबंध में भी बहुत लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं मसीह के बारे में कुछ नहीं समझता। मित्रों, सच पूछे तो मुझे भी उसके बारे में अनेक बातें समझ नहीं आती, परंतु ईश्वर सब कुछ समझता है। परमेश्वर मुझसे व आपसे अधिक उसे समझता है। इसी कारण से संत पौलुस पुकार उठता है कि मैं उसे समझूं, उसके जी उठने की सामर्थ्य और दुखों में उसकी संगति को देखूं। लय व्यवस्था 3:5 में लिखा है, और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाएं जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। चढ़ावा आग में भस्म करना या पकाना था, और इसका मतलब मसीह का संपूर्ण समर्पण और उसका मानवीय परीक्षण तथा दुख सहना है। इसको प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध की संज्ञा दी गई है। यहां जोर मसीह के कार्य की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व पर अधिक है। यहां उसका सिद्ध जीवन प्रतिबिंबित है, न कि पाप के लिए उसकी मृत्यु। उसके जीवन की दुख तकलीफ संसार के पापों के लिए नहीं थी। क्रूस के ऊपर पहले 3 घंटे का दुख भोगना मनुष्यों द्वारा दिया गया पाप था, परंतु क्रूस पर के अंतिम 3 घंटे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र यीशु का वेदी पर बलिदान था। अंतिम 3 घंटे के अंधकार ने मनुष्य की आंखों पर पर्दा डाल दिया। जब प्रभु को पसंद आया कि उसे कुचले, उसे असहनीय दुख सहना पड़ा और उसने अपने प्राण को पाप के लिए चढ़ावा अर्थात बलिदान कर दिया। यसायाह नबी की पुस्तक 53:10। यहाँ पर कृपया ध्यान दें कि मेल बलि ए होम बलि दोनों साथ साथ चढ़ाए जाते हैं। वे साथ साथ इसलिए कि मसीह की महिमा और उसके आंतरिक बहुमूल्यता का पूरी तरह से अवलोकन हो सके। अब आगे देखते हैं झुंड में से चढ़ावा। लय व्यवस्था की पुस्तक 3:6-7 में लिखा है, और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए। मेमने में हम एक विशेष ढंग से मसीह के चरित्र को पाते हैं, इसलिए मेल बलि के लिए उसका चयन बहुत उपयुक्त भी है। इसके विपरीत समूह से बैल या गाय का लिया जाना प्रभु की सेवकाई को दर्शाता है। बैल एक पालतू पशु है। बोझा ढोना व खेत जोतना उस युग के व्यापार का व आवागमन के साधन का प्रतिनिधित्व करता है। बैल मनुष्य का मित्र और सेवक भी है। बैल मसीह के सेवक रूप को दर्शाता है। मार्कुस के सुसमाचार में मसीह की सेवकाई का यह पहलू सुंदर ढंग से उभर कर आया है। मसीह को सेवक बताने के लिए हमें उसकी तुलना किसी जूते चमकाने वाले से करने की जरूरत नहीं है। मार्कुस रचित सुसमाचार में उसे परमेश्वर का सेवक करके उद्धृत किया गया है। वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था, पर तो भी मेमना की तुलना मसीह से करने का अर्थ उसकी मृत्यु और जीवन में पूर्ण सामंजस्य है। क्या आपने कभी गौर किया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी सेवकाई के आरंभिक दिनों में यीशु को देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार 1:29 में उसके व्यक्तित्व की ओर संकेत है। आरंभ से ही मेमना में वह गुण और योग्यता दिख पड़ती है जिससे वह संसार के पापों के निवारण का प्रतीक बन जाता है। सबसे पहला चढ़ावा मेमना का ही था जिसे हाबिल ने भेंट किया। ईश्वर ने भी आदम और हवा को मेमने के चमड़े से अंगरंखे तैयार करके पहनाए। यद्यपि मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता, परंतु विश्वास करता हूं क्योंकि हाबिल ने ऐसा किया था। यशाया 53 से यह स्पष्ट है कि यीशु मसीह हमारे अपराधों और पापों को उठाकर एक बदली बन गए, अर्थात हमारे बदले में मर गए। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यशाया 53 के 7 पद में यीशु का चित्र भेड़ के सदृश्य है। भेड़ अर्थात मेमना हमारा स्थानापन्न है। उसके पुनरुत्थान की दशा में भी उसे मेमना कहा गया। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 16 और 17 पद। मित्रों, मेमना ही संभवतः मसीह के सभी बलिदानों में सबसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है। हम 3 अध्याय उसके 8 और 10 पद में पढ़ते हैं, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों आलोकों पर छिड़के, और मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। मित्रों, चढ़ावे का यह धार्मिक अनुष्ठान झुंड के अन्य रीति रिवाजों के समान ही है। चर्बी ईश्वर का भाग था, यह पशु का बेहतर भाग समझा जाता था। ताजा मोटा पशु अच्छा समझा जाता और वही ईश्वर के लिए उचित चढ़ावा भी था। धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे अवतरण हैं जिसमें चर्बी युक्त मोटे जानवरों को श्रेष्ठ माना गया है। जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। नहमिया 8 अध्याय उसके 10 पद। यशायाह 25 के 6 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जीवनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। लूका 15 का 23। मित्रों, आजकल हम में से जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे चर्बी नहीं खाते हैं, परंतु चर्बी सबसे श्रेष्ठ भाग है और परमेश्वर ने उसे अपना भाग माना। जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उसमें लिपटी रहती है, वह भी, दोनों गुर्दे उसके ऊपर की चर्बी, गुर्दे समेत ऊपर की झिल्ली, सब प्रभु के लिए हैं। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ वस्तु की मांग करते हैं। यहां हमें मेलबलि का गूढ़ अर्थ व पूरा मतलब मालूम होता है। ईश्वर के साथ संगति का आधार प्रभु यीशु का रक्त है, यह सत्य है, परंतु संगति का एक और भी पहलू है। इसे संपूर्ण और अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए विश्वासी को जीवन का संपूर्ण समर्पण का बलिदान चढ़ाना है। इन दोनों पक्षों को प्रभु यीशु ने उसके अद्भुत निमंत्रण में संग्रहित किया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 उसका 28 पद। एक विश्राम है जिसे वह देता है, इसमें बहाए हुए लहू की ओर संकेत है। यह छुटकारे का विश्राम है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11:29-30। यह वह विश्राम है जिसका प्रतिनिधित्व चर्बी में मिलता है। हमें उसके पास आना चाहिए और स्वयं का चढ़ावा देना है। यही समर्पण का विश्राम है। मित्रों, यह वक्तव्य चर्बी भरी मोटी पूंछ का अनुवाद पूरी पूंछ चर्बी सहित एक विशेष प्रजाति का मेढ़ा है जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी पूंछ का वजन लगभग 5 किलो तथा बहुत अधिक चर्बी सहित था। हम लय व्यवस्था 3 उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और याजक इन्हीं वेदी पर जलाएं, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। एक अजीब वक्तव्य है और अनेक लोग इसे अन्य जाति बलिदानों आराधना में जोड़ते हैं। एक अश्शूरी लिखावट से पता चलता है कि ईशा रहदान पशु को वध करके देवताओं का चढ़ावा चढ़ाकर उनके साथ भोजन का पर्व मनाता है। तो भी मेल बलि में इसके विपरीत का सत्य है। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठों ले जाया करना, और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाए हो और जिन पर तुम्हारे यहोवा परमेश्वर की आशीष मिली हो आनंद करना। चर्बी को पूर्णता भस्म किया, परंतु पुरोहित को छाती और कंधा प्राप्त हुआ। भेंटकर्ता को अवशेष मिला, जिसे उसने ईश्वर के भवन में खाया। परमेश्वर मेजबान था और भेंटकर्ता एक पापी मेहमान बना। मित्रों, इस सब के पीछे गैर यहूदी वाद की पृष्ठभूमि है और इसराइली लोगों के विरुद्ध यशाया नबी उनकी मूर्ति पूजा के लिए यही दोष मढ़ता है, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाक मधु भर देते हो, यशाया 65 उसका 11 पद। एक दूसरे अनुवाद के अनुसार, जो भाग्य देवता की मेज पर अन्न की भेंट अर्पित करते हो, नियति देवी को मसाला मिश्रित मदिरा चढ़ाते हो। मेल बलि में परमेश्वर मेज लगाता है। धर्मशास्त्र के अनेकों आयतें या पद पर यह प्रकाश डालता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, भजन संहिता 23:5। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, भजन 36:8। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा, यूहन्ना 6:5-7। लो खाओ, यह मेरी देह है, मत्ती 26:26। प्रभु उद्धार और संगति की मेज तैयार करता है, यही बात मेल बलि में जोर देकर कही गई है। इससे उड़ा पुत्र के दृष्टांत को समझने में भी सहायता मिलती है। वह पिता है जो पालतू चर्बीदार पशु को कटवाता है, जब बेटा बाप की संगति में पुनः लौट आता है। बड़े जेवनार के दृष्टांत में भी वे प्रभु ही हैं जो लोगों को निमंत्रित करते हैं, आओ अब भोजन तैयार है, लुका 14:17 पद। यह उद्धार की मेज है जो प्रभु ने बिछाई है, और तब बार बार पढ़िए यूहन्ना 1 अध्याय। परमेश्वर के साथ संगति का आधार है मसीह के रक्त से छुटकारा और हमारा मसीह को पहचानना और अपने पापों को अंगीकार कर लेना। सर्वप्रथम हम प्रभु यीशु मसीह को निजी मुक्तिदाता ग्रहण करके परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करते हैं, तब उसके साथ संगति की मेज के निकट आते हैं। आजकल मनुष्य सोचता है कि वह स्वयं के अच्छे कर्मों से उद्धार की मेज बिछाकर परमेश्वर को भोजन का निमंत्रण देगा। प्रिय मित्रों, यह एक विधर्मी विचारधारा है। परमेश्वर उद्धार की मेज लगाता है, परमेश्वर ही संगति की मेज भी बिछाता है। बकरों का चढ़ावा, लय व्यवस्था 3:12 पद में लिखा है, और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए। मेल बलि की यह तीसरी और अंतिम विधि है। सभी तीनों प्रकार के चढ़ावे मेल बलि में मसीह के अलग अलग पक्षों का चित्रण करते हैं। बकरी मसीह के साथ पूर्ण रूप से मसीह के साथ एकता की ओर संकेत है, और वह मनुष्य का पाप हर लेने में सामर्थ है। वह हमारे लिए पाप बना, यह केवल सुंदर वक्तव्य ही नहीं है परंतु एक वास्तविक तथ्य है। वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, इसका मतलब उसने पूरी तरह हमारे पापों का दंड सह लिया। आपने यह कहावत अक्सर सुनी होगी कि मुझे बकरा मत बनाइए। अच्छा है मित्र, मसीह आपके लिए बकरा बनने को तैयार था। उसने मेरे और आपके पापों का दंड पूरी तरह उठाया। पापों के लिए उसका चढ़ावा स्पष्ट है, इब्रानियों 10:6-14 पद में मिलता है। आगे हम देखते हैं, आगे समूह और झुंडों के चढ़ावे का नमूना निम्न विधियों में मिलता है, लय व्यवस्था 3:13-17 पद में, और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हीं वेदी पर जलाए, यह तो हारून रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। मित्रों, यह दो वक्तव्य है जिन पर हमें ठहर कर ध्यान देना होगा, क्योंकि सारी चर्बी प्रभु की है और तुम चर्बी और रक्त नहीं खाओगे। यह दोनों निषेधाज्ञा चौंकाने वाली है। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन अध्याय 7 में मिलता है। रक्त का सेवन न करने की निषेधाज्ञा का कारण लेव व्यवस्था 17 अध्याय उसके 10 से 14 में मिलता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। चर्बी सेवन न करने की निषेधाज्ञा का कारण यहाँ बताया है, चर्बी प्रभु की है। मानव को स्मरण कराया गया है कि रक्त के द्वारा उसका छुटकारा हुआ है, और यही परमेश्वर के सामने हमारे ग्रहण किए जाने का आधार भी है, और यही हमें परमेश्वर की संगति और सहभागिता की मेज पर लाता है। परंतु चर्बी प्रभु की है, उसे सर्वश्रेष्ठ चाहिए, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण की जरूरत है। हमारे जीवन की प्रेम भेंट के साथ ही उसकी मधुर शांतिमय सहभागिता के प्रवेश द्वारा हम छुटकारे का अनुभव करते हैं। यह संदेश रोमियों की पत्री 12 अध्याय व यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 14 और फिलिपियों की पत्री 3 का 10 से 14 में मिलता है। उद्धार या मुक्ति रक्त से है, पवित्रता और सेवा चर्बी से प्राप्त होती है। तब हम आगे बढ़ते हैं, मेल बलि का नियम एवं विधान। मित्रों, मेल बलि का नियम या विधान लय व्यवस्था की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 से 38 पद में मिलता है। पांचों चढ़ावों के लिए दिए गए निर्देशों में यह सबसे विस्तार पूर्वक और अंतिम है। दूसरे बलिदानों की उपयोगिता में जाने से पहले हमें परमेश्वर की शांति का आनंद लेना चाहिए। हम अध्याय 7 में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ इतना कहना काफी होगा कि हारून, उसके पुत्र और दूसरे पुरोहित मेल बलि में वक्ष एवं कंधे के भागीदार हैं। वक्ष स्थल अर्थात छाती हमारे लिए मसीह के प्रेम को और कंधे मसीह की शक्ति और ताकत को दर्शाते हैं। वह अंत अर्थात चरम तक बचाने में सामर्थ हैं। मसीह में यही हमारा भाग है। मित्रों, क्या आप उसको सुन रहे हैं? मसीही मित्र, क्या आप उसके मेल बलि चढ़ावे में उसे सुनते हैं? आज मुझे और आपको जांचने की जरूरत है कि क्या मसीह हमारे बदले में मरा। यदि हाँ, तो क्या मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि लहू बहाए बिना उद्धार की प्राप्ति नहीं होती, और सिर्फ यीशु ने ही अपना पवित्र लहू आपके लिए और मेरे लिए बहाया है, और सिर्फ वही उद्धार दे सकता है। तो क्या आज आप उद्धार पाना चाहते हैं, पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं? आप देर न करें, प्रभु यीशु के पास आए और उसे अपने हृदय में आने के लिए आमंत्रित करें। अपने पापों को मान लें और मन फिराएं, यीशु से प्रेम करें, और निश्चय ही शांति और आनंद आपके जीवन में आएगा। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष को प्राप्त किया है। प्रभु आपकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा पाता पूरा विश्राम। पाप की लहरों से घिरा हुआ था ना कोई मंजिल और ना किनारा।